स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 27। को एते अनुपथायेत एकादश महाभटः एतावा ललना शुभ्रो कोयम् ते अहि पुरासरः एते अनुपथायेत एकादश महाभटः एतावा ललना शुभ्रो। शब्दानुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की कह कौन एते ए सब अनुपथा अनुचर ये जो ते तुम्हारे एकादश ग्यारह महाभटः अत्यंत सुरवीर अंगरक्षक एतः ए सब बा भी ललनाहा स्त्रियां शुभ्रो हे सुलोचनी कह कौन अयम यह ते तुम्हारा अहि सर्प पुरह सामने सरह चलने वाला। अनुवाद हे कमल नयनी तुम्हारे साथ के ग्यारह बलिष्ठ अंगरक्षक और ये दस विशिष्ट सेवक कौन है। इन दस सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। कृपया दोहराइए हे कमल नयनी तुम्हारे साथ के ग्यारह बलिष्ठ अंगरक्षक और ये दस विशिष्ट सेवक कौन है। इन दस सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। तात्पर्य मन के दस बलिष्ठ नौकर हैं। पांच कर्मेंद्रियां तथा पांच ज्ञानेंद्रियां ये दोनों मन की अधिक्यता में कार्य करते हैं। मन समेत ये दोषों कुल मिलाकर ग्यारह प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये दस इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं और दस इंद्रियों के अधीन असंख्य इंद्रियां हैं जिनकी असंख्य इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति होनी है किंतु ये सब प्राण पर आश्रित हैं जिसे यहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां रहती हैं और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरंजन नाम की जीव इतने सारे ठाट बाट से अत्यधिक उद्विग्न रहता है। यह सारा ठाट बाट अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को श्री भगवान की शरण ग्रहण करने और उन्हीं पर सारी चिंताओं को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीललिता विशाखानितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जयतां सुरतो पंगु मम मंदमतेर्गति मत्सर्वसुपादाम्बुजो श्री श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद् बृंदारण्य कल्पद्रुमाधर श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठलिभे सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु सुनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवार्षादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस प्रातः श्रीमद् भागवतम सत्संग में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी वैष्णव के श्री चरण में प्रणाम करते हुए उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं इस प्रसंग के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास कर सकूँ। जैसे कुछ ही दिनों से हम लोग पुरंजन के बारे में सुन रहे हैं। जब प्राचीन परिषद के 10 पुत्रों ने प्रचेताओं ने बिंदु सरोवर के पास गए तपस्या करने के लिए और जल के अंदर रहकर तपस्या किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, परंतु नारद मुनि ने ये देखे कि पुत्रों ने तो भगवान हरि को प्रसन्न के लिए उपयुक्त मार्ग ढूंढ लिए, परंतु उनके जो पिता है वो इस प्रकार कर्मकांड में फंसे हुए हैं। तो किस प्रकार एक विपरीत परिस्थिति है। तो उन्होंने नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरिष्ठ को कृपा करने के लिए और ज्ञान उपदेश प्रदान करने के लिए प्राचीन वरिष्ठ के पास आते हैं। और हालांकि नारद मुनि ने प्राचीन वरिष्ठ को प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते होते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कितने गलत कार्य कर रहे हैं, इतने बड़े राजा होकर ये कर्मकांड में फंसे हुए हैं जो जन्म मृत्यु को चक्र को बढ़ाते रहना है। एक जीवन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु चक्र को काटना है, बार बार जन्म लेना, बार बार बुद्धि होना, फिर बुद्धावस्था को प्राप्त करना, फिर मरना, फिर माँ के गर्भ में जाना, फिर जन्म लेना। इस प्रकार जो जन्म मृत्यु चक्र है इसको खत्म करना ये मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है। परंतु नारद मुनि ने सोचे कि कितना मूर्ख है राजा कि ये कर्मकांड में फंसे हुए हैं जबकि उनके पुत्रों ने हरि को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। तो नारद मुनि ने इस प्रकार कृपा करने के लिए आए और उनको प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते होते तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने भिन्न ढंग से दूसरे ढंग से उनको समझाए, एक रूपक के माध्यम से अन्य उक्ति भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये पुरंजन की कहानी सुनाकर उनको बताते हैं। तो पुरंजन क्या है, पुरंजन शब्द का क्या अर्थ है, कोई बता सकते हैं आप में से, कोई बताएंगे पुरंजन शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। जिसके जिसके अत्यधिक बद्ध जीव, हाँ ये भी एक उत्तर है। एक शब्द में, हाँ ये भी उत्तर है। और कोई बताएंगे? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दो तीन श्लोक के पिछले श्लोकों के तात्पर्य में लिखे हैं, पुरम जन पुरंजना। पुरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर, पुरम और या इस रूप के भीतर। जन शब्द का अर्थ है जीवात्मा, यानी जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है उसे पुरंजन कहलाता है। इस शरीर का प्राप्त करने का अर्थ क्या है? यानी ये शरीर जो है, पंच इंद्रियां है और विभिन्न प्रकार मन बुद्धि अहंकार, ये सारे चीज़ें का क्या आवश्यकता है? क्योंकि जीवात्मा विषय भोग करने के लिए इच्छुक है, इसलिए इस शरीर में बद्ध हुआ है। तो इसलिए दूसरी ओर हमें, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, जो जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति के लिए सतत प्रयास करता है तो उसे पुरंजन कहलाता है। जो जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयत्न करता है उसे पुरंजन कहते हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस शरीर में है, जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान, उसे हमें पुरंजन नहीं कहते। जिस प्रकार भगवत गीता में बोलते हैं भगवान ने कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ज न स पाप्य न लिप्यते पद्मपत्र मेवावंशा, कि जो व्यक्ति भगवान ब्रह्म को आश्रय कर कर्म करता है या ब्रह्म को अर्पित कर कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा करोति ज न स पाप्य न लिप्यते, वो व्यक्ति हालांकि भौतिक जगत के स्पर्श में रहता फिर भी वो संगम त्यक्त्वा करोति ज न स पाप्य न लिप्यते, वो पाप में लिप्त नहीं होता। क्यों? किस प्रकार पाप में नहीं लिप्त होता है? पद्म पत्र मेवांबसा, वो जिस प्रकार पद्म पत्र पानी के ऊपर रहता फिर भी पानी को स्पर्श नहीं करता। तो उसी प्रकार बहुत से साधु संत है जो भगवान के भक्त हैं, तो इस शरीर में, भौतिक शरीर में रहते हैं, परंतु हमेशा वो भगवान के सेवा में संलग्न रहने के कारण वो इस भौतिक संदूषण से मुक्त रहते हैं। तो उन्हें हमें पुरंजन नहीं कहते हैं। पुरंजन वो व्यक्ति है जो सतत इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ करता है नहीं। तो नारद मुनि ने प्राचीन परिषद को बताया कि जो पुरंजन है उसका एक मित्र है, अज्ञात मित्र है, जो उसको भगवान को बताया जाता है कि जीवात्मा जब भगवान से बिछोड़ जाता है तब तो वहीं से उसका ये भौतिक चक्र प्रारंभ होता है, ये सब प्रकार दुख प्रारंभ होता है। जीवात्मा जब भगवान को भूल जाता है इस भौतिक दुनिया में आता है और जन्म मृत्यु का चक्र प्रारंभ होता है। हालांकि पुरंजन अपने मित्र के साथ था परंतु वो भगवान को भूल चुका है, अपने श्रुत मित्र को भूल चुका है, इसलिए यहाँ पर बताया जाता अज्ञात मित्र। नारद मुनि बोलते हैं कि पुरंजन का एक अज्ञात मित्र था, तो वो उसने अपने मित्र को भूल चुका है और संसार भर में भटकता रहता है, एक उपयुक्त जगह ढूंढता है जहाँ पर वो अपने इच्छाओं को पूर्ति कर सके, इंद्रियों को तृप्त कर सके। तो इस प्रकार घूमते घूमते थक जाता है, विभिन्न प्रकार जोनियों में भ्रमण करता है, 84 लाख जोनियों में भ्रमण करता है, फिर मानव जोनियों में भी कितने प्रकार जोनियों में भ्रमण करता है। 4 प्रकार मानव है, उनमें से पशु समान मानव भी है, मध्यम धरण में है और शिक्षित है, वैदिक फॉलोअर जो वेद वेदांत उपनिषद फॉलो करते हैं उनमें से है, कर्मकांडी है। इस प्रकार हर जोनियों में, हर प्रकार जोनियों में भ्रमण करता रहता है। फिर उसने भारतवर्ष में एक हिमालय के दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर प्राप्त करता है पुरंजन, और वहाँ पर वो आता है और वो जो नगर है, जिस प्रकार पिछले श्लोक में आप लोग सुने हैं किस प्रकार वर्णन हुआ है, तो उस नगर में बहुत सुव्यवस्थित है वो नगर, 10-9 द्वार हैं उसमें और विभिन्न प्रकार पिछले श्लोक में जैसे सुने हैं, जो नगर के जो फर्श है वो नीलम, हीरा, सोना, इस प्रकार मूल्यवान धातुओं से बनी हुई है। और उसने एक सरोवर, नगर के बाहर पास में ही एक सरोवर देखा, उस सरोवर के चारों ओर से बहुत सारे वृक्षलताएँ घिरी हुई है और बहुत सारे पक्षियों में गूंजते हैं, मधुमक्खी गूंजता है, इस प्रकार जो हिंसक पशु है वहाँ पर वो अहिंसक हो जाते हैं। इस प्रकार उपमा दिया जाता है, संसार को उपमा दिया जाता है। तो वहाँ पर उस उद्यान में घूमते हुए पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री को देखा। वो स्त्री कौन है? जैसे 20 नंबर श्लोक में हमने देखा है कि आज के जो श्लोक में जो विषय वस्तु है वो 20 नंबर श्लोक और 21 नंबर श्लोक दोनों श्लोक में वो आलोचना हो चुका है, विषय वस्तु जा चुका है। तो 20 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा है कि जो सुंदर उद्यान में जो पुरंजन ने जो स्त्री को देखा उसके साथ 10 सेवक थे। वो 10 सेवक तो हमने समझे हैं, कौन है वो 10 सेवक? वो 10 सेवक कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 सेवक हैं, तो हमने ये समझे हैं। और उनके साथ जो सैकड़ों स्त्रियां थी ये कौन है? हाँ, क्या है? अज्ञान, अज्ञान, इच्छाएं, इच्छाएं, सुख भोगने की इच्छाएं, यानी जो 10 इंद्रिय है हर एक इंद्रियों के पास सैकड़ों स्त्रियां है, हर एक इंद्रियां सैकड़ों तन्मात्रा यानी विषय वस्तु भोगने की इच्छा रखती है। तो हिसाब कीजिए कितने खतरनाक है जो 10 इंद्रियां है, कितने खतरनाक है। एक इंद्रियां है वो एक इंद्रिया सैकड़ों इंद्रियों भोग्य विषय वस्तु यानी तन्मात्राओं को भोगने की चाह रखती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल के समय में कोई भी एक वस्तु है जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कंपनियों में ने, तो उसको एक ही वस्तु को विभिन्न धर्म में एडवर्टाइज करते हैं। हर एक दिन लोगों को लगे कि नया नया वस्तु है, ये नया वस्तु है, ये पहले का वस्तु नहीं है, ये नया है। हालांकि जो वस्तु का गुणधर्म कंपनी चेंज करे वो या चेंज नहीं करे, परंतु कस्टमर को लगे कि ये एक नया वस्तु है, एडवर्टाइज एड देते हैं ताकि ऐसे लगे लोगों को ये नया वस्तु है। हमारे संपूर्ण जीवन में इस प्रकार वस्तु हमने खरीदा नहीं, उपभोग नहीं किया है। ये सेम चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने जो बोलते हैं कि हमें एडवांस कर गए हैं, आधुनिक सभ्यता बहुत से प्रगति कर चुका है। क्या प्रगति कर चुके हैं हम लोग? प्रभुपाद जी बोलते हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले लोग जन्म लेते थे, मरते थे, जरा वृद्धावस्था प्राप्त करते थे और उन लोगों का मृत्यु होता। आदिदैविक आध्यात्मिक आदिभौतिक तीर्थ भी था लाखों वर्ष पहले, और अभी भी आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश है, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। अजय जैसे गर्मी है, सर्दी है, विभिन्न प्रकार रोग भी है, हर मात्रा दृष्टि से हम देखें तो पहले जमाने में समय से जो क्लेश है आज के जमाने में जो क्लेश है ये बढ़ चुका है। लाखों करोड़ वर्ष पहले लोग जन्म लेते थे, मरते थे, अभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि अभी भी है। लाखों करोड़ वर्ष पहले आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक ताप होता था, अभी भी है। इस प्रकार तो हम क्या चेंज कर चुके हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस प्रकार एक पुराना शराब को एक नया बोतल में है, शराब सेम चीज है, पुराना शराब को एक नया बोतल में रख दी जाए तो हम सोचते हैं कि एक नया वस्तु है, नया आइटम है, ऐसे नहीं। लाखों करोड़ वर्ष साल पहले भी आहार निद्रा भय मथुन करते थे, अभी भी आहार निद्रा भय मथुन है, कुछ चेंज नहीं हुई है। लोग एक क्या बोलते हैं, एक प्रकृति के मोह माया में आकर, मोह में आकर वो सोचते हैं कि इसको हमें किसी ना किसी तरीका से हमें इसको इधर उधर करके हमें ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कैसे कर सकें। तो इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावनाएं हैं वो बढ़ती जाती है लोगों की, ताकि और ये भौतिक दुनिया में पड़े रहें। तो जितना भी सारे प्लान बनाते हैं भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मोह आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञान अभिचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी सीता। मोह आशा, जो व्यक्ति प्रकृति के मोहिनी मोहने वाली प्रकृति के चंगुल में आ चुका है तो उनका जो मोह आशा जो आशाएं हैं कि इंद्रिय तृप्ति प्राण प्राप्त करने के लिए जो हर पल हमें सोचते प्लान बनाते हैं जो आशा है मोह आशा, मोह आशा में विफल आशा, ये आशाएं सब विफल हो जाता है। मोह कर्मणा, जितने भी कार्य करते हैं इसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म भी विफल हो जाता है। मोह आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञान भी चेतसा, उनका ज्ञान भी मुक्ति प्राप्त करने का भी ज्ञान भी वो भी विफल हो जाता है, क्योंकि वो लोग राक्षसी में आसुरी में जैव प्रकृति में महीन सदा। ये जो राक्षसी आसुरी प्रकृति स्वभाव है, ये प्रकृति में प्रकृति के गुणों के अधीन में आकर जंगल में आकर ये जो राक्षसी आसुरी स्वभाव है वो सब नष्ट हो जाता है। जितने भी प्लान बनाते हैं इंद्रिय तृप्ति का सब नष्ट हो जाता है। तो हमें किसी भी हालत में प्रकृति के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक विषय पर आलोचना कर रहे थे कि जो एक इंद्रियों के पास लाखों करोड़ इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु प्राप्त करने की चाह है, वास्तव में हमें हमारा जो स्वभाव है स्वरूप स्थिति है उसी प्रकार है कि हमेशा हमें आनंद चाहिए, क्योंकि हमें स्वभाव तो सच्चिदानंद है। जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद है हम भी सच्चिदानंद है, परंतु हमें भगवान से भूल चुके हैं। भगवान को भूल चुकने के कारण इस भौतिक जगत में आए हैं और इस भौतिक जगत में आकर हम क्या करते हैं, प्रकृति पर प्रभुता जताते हैं और इंद्र तृप्ति यानी जितने हमें प्रकृति पर प्रभुता जताना चाहते हैं तो उतने हमें ये प्रकृति के पास में बंधन में पड़ जाते हैं। स्वभाव तो हमें भगवान के दास हैं, परंतु हमें इतना प्रकृति के अंदर में भूल गए हैं यानी बुद्धि खो गया, हम लोगों का बुद्धि नष्ट हो चुका है, हम कभी भी ये नहीं सोच पाते हैं। जिस प्रकार नारद मुनि ने प्राचीन वर्षों बोलते हैं कि वो पुरंजन का एक मित्र था अज्ञात, उसका नाम है अज्ञात, यानी भगवान को ये भूल चुका है, ये ज्ञान नहीं है वो भगवान कौन, मैं कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान क्या है। तो इस प्रकार हमें हर पल इस प्रकार प्रकृति के साथ संघर्ष करते रहते हैं कि हम किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करें, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करें। स्वभावतः हम भगवान का दास हैं और इस प्रकार सच्चिदानंद है, हर पल हमें आनंद में रहना चाहिए, रहते हैं भगवान के पास जब रहते हैं, परंतु यहाँ आने के वजह से तो हमें ये दुख ही दुख प्राप्त होता है, परंतु एक गलत स्थान में हमें सुख की तलाश करते हैं, तो ये यहाँ कभी संभव नहीं है। इस प्रकार पुरंजन ने इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की साधन को ढूंढते रहता है, इस प्रकार वो थक जाता है और दिन रात इस प्रकार जिस पर प्रभुपाद तात्पर्य आज के तात्पर्य अंत में लिखते हैं कि वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद वास्तव में पुरंजन नाम के जीव इतने सारे ठाट बाट से अत्यधिक उद्विग्न रहता है, यह सारा ठाट बाट अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है वो सारे चिंताओं से मुक्त हो जाता है। परंतु हम क्या करते हैं, ये नहीं समझते कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना है या भगवान को जानना है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रय बहिर्अर्थ मानिन, कि हम लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य है, लक्ष्य है विष्णु को प्राप्त किया, स्वार्थ असली स्वार्थ है विष्णु को प्राप्त करना है। न ते स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रया, हमें दूसरी ओर से दूसरी जगह में आनंद ढूंढते हैं, खोजते हैं। दुराशया मैंने जो आशय जो आशा करते हैं, जैसे मोह कर्मणा मोह ज्ञान, जो हमारी जो आशा है दुराशा, वो आशा कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली है। एक महिला थी तो वो हमेशा इस प्रकार जो भौतिक प्रसाधन व्यवहार करती थी, अपने शरीर को सुंदर सुस्थ सबल रखती थी, बहुत सौंदर्य बनाए रखती थी, हर प्रकार कॉस्मेटिक यूज करती थी। तो एक दिन उसका कुछ बीमार होने लगी और उसको हॉस्पिटल में ले लिया गया। तो हॉस्पिटल में उसने भगवान से बहुत विनत की, प्रार्थना की, हे भगवान मुझे कम से कम कुछ साल हमें कुछ आयु समय दीजिए ताकि हमें कुछ कर पाएँ। तो इस प्रकार आतुर प्रार्थना सुनकर भगवान ने उसे बोले ठीक है। तो वो महिला फिर वो हॉस्पिटल में उसका स्वस्थ ठीक हो गया और उसने फिर कार में बैठी और अपने घर की ओर आने लगी। रास्ता में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कार के साथ कुछ एक्सीडेंट हुई तो उस समय वो महिला का मृत्यु हो गई। तो उस समय जब जम के पास गए तो उस समय भगवान से बोले कि हे भगवान, एक जमराज बोलते कि किस प्रकार भगवान ने मुझे वचन दिए हैं कि मेरा मृत्यु नहीं हो सकती, मुझे कुछ सालों के लिए समय दिए हैं, किस प्रकार मेरा मृत्यु हुई। तो जमराज ने बताया कि तुमने गलत किया, भगवान ने बताया उस समय वहाँ कि तुमने जिस प्रकार मुझे प्रार्थना किए थे, जिस परिस्थिति में, जिस रूप में, परंतु बाहर आने के बाद मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया। यानी वो महिला बाहर आने के बाद फिर अपने कॉस्मेटिक है जो प्रसाधन सामग्री है उसको व्यवहार कर लिए, अपना स्वरूप को चेंज कर लिए, यानी वो अपने को कुछ अलग करी बना रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमें किसी भी हालत में हमें अपने को, अपने सौंदर्य को बनाए रखना चाहें तो कभी भी रहने वाला नहीं है। प्रकृति के नियम है ये कि ये छह विकार होने वाली है, जन्म होना, फिर कुछ वृद्धि होना, कुछ समय तक रहना, फिर क्षण होना, फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त करना और अंत में उसका नाश होना। तो हमें अपने को शरीर समझते हैं और तो इसलिए हमें वो शरीर को आनंद देने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। जैसे यहाँ पर बताएं कि एक इंद्रियों का आशा सैकड़ों आशाएं इच्छाएं हैं तृप्ति करने के लिए। तो व्यक्ति के समय पास समय कहाँ है, कितने इंद्रियों को तृप्ति दे सकता है। दिन में तो 7-8 घंटा नौकरी करने चले जाता है, 10 घंटा, और जितने समय बचता है तो उसमें कितने सारे आइटम्स खरीद सकता है, कितने सारे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु प्राप्त कर सकता है और वो अपने इंद्रिय तृप्ति दे सकता है। जबकि वो व्यक्ति को असंख्य इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है, यह अनलिमिटेड सुख की आवश्यकता है, तो कितने सुख अपने को दे सकता है वो व्यक्ति, ये भी मिथ्या प्रयास है। इसलिए ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बोलते, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को बोलते हैं, उस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बोलते, हे मेरे पुत्र, नायम देह देह अयम नुल्ल के कष्टान कामान बीढ़ हो जाऊंग बाजे तप दिव्यम पुत्र का आयोजन सत्य शुद्ध जसा ब्रह्म सुखम तो अनंतम है। बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, ये जो मनुष्य देह है स्वर कुत्ता के भांति कठिन संघर्ष परिश्रम करके इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। नायम देह देह अयम नुल्ल के कष्टान कामान बीढ़ हो जाऊंग बाजे तप दिव्यम, तुम लोग तपस्या करने के लिए जाओ, किस लिए ना, दिव्यता के लिए, अपने जो स्थिति है उस स्थिति को शुद्ध करो। इसी भौतिक शरीर में आप लोग इंद्रिय तृप्ति या आनंद, जो आनंद आप चाहते हो वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सुखम आत्यंतिक तत् अतीन्द्रिय ग्राह्यम, वास्तविक जो सुख है वो इंद्रिय अतीत है, इस इंद्रियों से अनुभूत नहीं होती है। कोई व्यक्ति हमें अच्छा से बोल दिया, कोई व्यक्ति हमें अच्छा से खिला दिया, कोई व्यक्ति अच्छा से पहनावा दे दिया, या कोई व्यक्ति हमें कुछ भौतिक सुविधा दे दिया, हमें आनंद बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और वो व्यक्ति को बहुत प्रणाम कर लेते हैं मन से और उसका बहुत सराहना करते हैं, उसको बहुत प्रशंसा करते हैं। ये वास्तव में सुख नहीं है, ये सब शारीरिक सुख है, दैहिक सुख है। ऋषभदेव भगवान बोलते हैं कि हे मेरे पुत्र, ये जो सुख है ये सुख तो बीड़ भुजाऊ बाजे, ये जो स्वर है कुत्ते है उन लोगों को उपलब्ध है। और सेम बात भी प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सर्वत्र लभ्यते दुखम, सब हर जगह में ये सुख प्राप्त है, जिस प्रकार दुख प्राप्त होता है अन्यास में प्राप्त है, बिना प्रयास में हमें दुख जैसे प्राप्त होता है हमें, इस प्रकार ये सुख भी सब जगह में उपलब्ध है, तो हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करना चाहिए। ये ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को बोलते हैं कि तपस्या करना, तप दिव्यम, हमें तपस्या करना, क्यों तपस्या करें ना, हमारे जो ये जो स्थिति है अशुद्ध है, इस स्थिति को हमें शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध करने के बाद क्या होगा ना, जो सुख प्राप्त करने के लिए आप दिन रात परिश्रम करते हैं और संघर्ष करते हैं प्रकृति के साथ, तो वो सुख उससे कोई गुना सुख तो सुखम अनंतम, बोलते कि जो सुख आप प्राप्त होंगे तपस्या करने के बाद, स्थिति को शुद्ध करने के बाद वो सुख ब्रह्म सुख है, वो तो अनंतम, वो अनंत सुख है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। तो आप थोड़ी से बूंद के माप सुख है जो मरुभूमि के अंदर है उसको प्राप्त करने के लिए इतने कठिन संघर्ष परिश्रम करते हैं, जबकि वो सुख थोड़ा थूक के पास जाते हैं, थोड़े जाते हैं वो सुख और आगे भागता है, मृग मरीच का सदृश है। तो वास्तव में ये भ्रम है, ये माया के काज है। तो तुम तपस्या करो मनुष्य जीवन में, और तपस्या करने के बाद फिर तुम्हें असली सुख प्राप्त होगा, तुम्हारा सत्ता जब शुद्ध हो जाएगा फिर तुम्हें असली सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान राम के एक नाम, परम ब्रह्म के एक नाम राम है। रमंती जोगिनाम अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदनाशो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो जोगी जन होते हैं वो परम ब्रह्म में रमन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो इसलिए भगवान परम ब्रह्म का एक दूसरा नाम है राम। तो हमें हर जगह में प्रहलाद महाराज के उपदेश में जाइए, ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव के उपदेश में जाइए, कहीं भी जाइए तो हर चीज़ एक ही चीज़ आपको मिलेंगे कि हमें इस मनुष्य जीवन में गुरु के आश्रय लेकर तपस्या करना चाहिए और आध्यात्मिक विद्या सीखना चाहिए। जिस प्रकार नारद मुनि ने प्राचीन वरिष्ठ को इस प्रकार बोलते हैं एक रूपक के माध्यम से, तो ऋषभदेव भगवान बोलते हैं कि जाओ मेरे पुत्रों, तुम जाओ तपस्या करो। भगवान ऋषभदेव बहुत सुंदर सुंदर आगे उक्ति बताते हैं। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, जब प्रहलाद महाराज छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब संध अमर उनका जो अध्यापकों थे तो उन्होंने उनको शिक्षा देते थे, राजनीति कूटनीति अर्थनीति साइंस पॉलिटिक्स इस प्रकार डिप्लोमेसी इस प्रकार से शिक्षा देते थे। तो प्रहलाद महाराज को अच्छा नहीं लगता था। प्रहलाद महाराज हालांकि उसको पढ़ते थे और वो दोहराते भी थे, परंतु उनको अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे कि ये जो राजनीति है, किसको राजनीति में किसको अपना सोचना और किसको दूसरा सोच, दूसरे को पराई सोचना, इस प्रकार अपना पर होता है उसमें, शत्रु मित्र होता है उसमें। इसलिए इस प्रकार ज्ञान उनको पसंद नहीं होता था प्रहलाद महाराज को। फिर भी क्या करें, पिताजी जो भेजे हैं अध्यापक पढ़ाते हैं। तो एक बार प्रहलाद महाराज को अपने पिता के गोद में बैठा दिया गया और बहुत छोटे थे, तोतिल तोतिल बोलते थे, 5 साल से कम भी थे। तो उस समय प्रहलाद महाराज ने बताए, प्रहलाद प्रहलाद तुमने क्या सीखा गुरुकुल में, सबसे अच्छा चीज क्या सीखा गुरुकुल में। तो प्रहलाद महाराज हालांकि 5 साल से कम उम्र के हैं, परंतु ज्ञान जो है, ज्ञान जो असीमित ज्ञान है, जो विद्या है आध्यात्मिक विद्या है वो असीमित है। और आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के बाद कोई भय नहीं रहता, क्योंकि भयम द्वितीय अभिनिवेश था। जो भय होता है कि भगवान को छोड़कर और कुछ वस्तु के प्रति जब हमें आकर्षण होता तब भय उत्पन्न होता। तो प्रहलाद महाराज के पास आध्यात्मिक विद्या है तो भय नहीं है। हालांकि सर्वशक्तिमान वहाँ पृथ्वी ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हिरण्यकशिप जो महान दुष्ट है उसके गोद में बैठा है, और जो जिस ज्ञान का विरोध है वो, यानी भगवत विज्ञान के विरोध है, वो विरोधी व्यक्ति है, फिर भी प्रहलाद महाराज ने निर्भया से बोलते हैं कि तत्साधुमन्य असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम, तत्साधुमन्य असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम असद्ग्रहात् हित्वात्मपात गृहमान्धकूपम वनम गत जद हरिमाश्रित। बोलते हैं जो व्यक्ति असंजत इंद्रियों को तृप्ति प्रदान करने के लिए तथाकथित एक गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है, वह गृहस्थ जीवन इस प्रकार है कि एक अंधकूप के सदृश है, जहाँ पर पानी ही नहीं है और विभिन्न प्रकार जंगली जंतुओं से भरपूर है। वहाँ उस प्रकार अंधकूप त्याग कर वन में जाना चाहिए और भगवान हरि के शरण ग्रहण करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार शिक्षा देते हैं अपने प्रारंभ से ही, प्रहलाद महाराज ने प्रारंभ से ही इस प्रकार शिक्षा अपने पिताजी को देते हैं। फिर जब इस प्रकार सुने प्रहलाद महाराज के मुख से हिरण्यकशिप ने, तो हिरण्यकशिप ने हंसने लगे कि उसने बोले कि शत्रुओं की वाणी द्वारा इस प्रकार बाल बुद्धि बिगाड़ जाती है। इस प्रकार शत्रु लोग आके छद्म में से आके प्रहलाद की बुद्धि को बिगाड़ दिए हैं। तो उन्होंने क्या किए, तो संद अमर को बोले कि ए तुम दोनों इसको ठीक से ढंग से शिक्षा दो, बड़े सावधान से उसको आश्रम पाठशाला में रखो और देखो कोई वैष्णव ताकि छद्मवेश में न आ पाए और उनको ढंग से शिक्षा दो। तो इस प्रकार संद और अमर को प्रहलाद महाराज को अपने पाठशाला में फिर ले लेते हैं, और राजमहल के पास में ही पाठशाला बनाए थे प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने के लिए। तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर प्रहलाद महाराज शिक्षा देने के बाद कुछ दिनों बाद फिर प्रहलाद महाराज को लेके आते हैं और अपने माता के पास लेके आते हैं, और माता ने ठीक से ढंग से नहला धुला दिए और विभिन्न प्रकार वस्त्र आभूषण से विभूषित कर दिए और उनको लेकर पिताजी के गोद में बैठाए। जब पिताजी के गोद में, उससे पहले जब पिताजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रसन्न हो गए और अपने गोद में बैठा लिया और अपने नाक से प्रहलाद का मस्तक सूंघने लगा और इस प्रकार उनके आंख से आंसू गिरने लगा, प्रेमाश्रु गिरने लगा। ये भौतिक प्रेम है, कोई आध्यात्मिक प्रेम है नहीं है। इस प्रकार राक्षस लोग भी दया करते हैं, प्रेम करते हैं लोगों को, कभी कभी आप देखेंगे वो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं वो अभक्त है, वो राक्षस हैं, वो भी दया और प्रेम करते लोगों को, फिर उनका दया और प्रेम वो आगे यहाँ पर जान पाएंगे प्रहलाद महाराज का चरित्र किस प्रकार, उसको मारने के लिए किस प्रकार तैयार हो जाता। तो इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप के चरण स्पर्श कर रहा था और हिरण्यकश्यप ने उनका माथा सूंघने लगा और प्रेमाश्रु गिरने लगा, तो उस समय हिरण्यकश्यप ने पूछा, है प्रहलाद तुमने बहुत दिन तक पाठशाला में अपने पढ़े, बहुत सारे कुछ सीखे हैं अपने अध्यापकों से, तुमने सबसे अच्छा चीज़ क्या सीखे, क्या सबसे अच्छा चीज़ जो समझते हैं वो बोलो, क्या है वो? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि तत् क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण क्रियति भगवती अद्धा तन्मन्यम अधिकतम उत्तमम। बोलते हैं कि जो श्रवण है भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन भगवान के नाम जस रूप गुण परिकर साज सामग्री के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में स्मरण करना, कृष्ण के स्मरण बारे में सारी लीलाओं का स्मरण करना, भगवान का वंदन करना, भगवान का षोडश उपचार से उनका पूजा करना और सब कुछ भगवान के चरण कमल में समर्पित करना अपने को। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति बोले और बोले कि ये इससे अधिक कुछ मैं नहीं समझता हूँ, ये जो भगवान के प्रति जो भक्ति है इससे अधिक और कुछ नहीं है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार सुना तो तुरंत ही प्रहलाद क्रोध हो गया, उसका आंख लाल बबले बबले हो गया, लाल लाल हो गए और तुरंत उसने संध्या अमर को पास में खड़े थे उनको डांटने लगा, अरे मूर्ख ब्रह्म बंधु तुमने मेरा आज्ञा अवज्ञा किया, तुमने मेरा को निंदा किया, तुमने किस प्रकार पाठ पढ़ाया इनको, मेरा शत्रु के बारे में शत्रु का पक्ष लेकर और उस भक्ति के बारे में तुमने ज्ञान दिया, तुम असार ज्ञान दिया तुमने। तो इस प्रकार क्रोध होकर इस पर डांटने लगे संध्या और अमर को। तो उस समय संध्या ने बोला कि हे असुरराज, हमने इस प्रकार शिक्षा उसको कभी नहीं दिए हैं, हमने कभी भी पाठशाला में इस प्रकार शिक्षा उनको विष्णु भक्ति के बारे में कभी ज्ञान नहीं दिए, हम नहीं जानते ये कहाँ से सीखा और कैसे सीखा, किसने सिखाया। परंतु तो जिस प्रकार संध्या और अमर को बोले तो हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, अरे मूर्ख कुलांगर, अगर तुमने अध्यापकों से ये सारी चीज़ नहीं सीखा तो तुमने ये सारी चीज़ कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद महाराज फिर वो बताते हैं, बहुत सुंदर जो प्रहलाद महाराज का जो उपाख्यान है, कहीं भी प्रहलाद महाराज बचपन से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में तो वही भगवत विज्ञान प्रचार करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो प्रहलाद महाराज फिर बताते हैं कि तुमने किस प्रकार उससे पहले जब संध्या और अमर को उसको पाठशाला में ले लिए थे पहला बार, तो उस समय उनको पूछे कि हे प्रहलाद, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे जैसे हैं तुम ऐसे नहीं हो, ये बच्चे जैसे अच्छा बोलते हैं, अच्छे ज्ञान है, उनका बुद्धि है, तुम्हारा बुद्धि वैसे नहीं है, तुम्हारा बुद्धि बिगड़ चुका है, तुम इन सारी चीज़ों कहाँ से सीखे तुमने, जो हमने सिखाया नहीं अब आज तक तुम्हें, ये सारे जो विष्णु के बारे में तुम्हें कहाँ से सीखे, किसने तुम्हें सिखाया, हमने तो कभी ये सिखाया नहीं, हम तुम्हारा अध्यापक होने के नाते तुम्हें प्रश्न करते पूछते हैं कि तुम सही सही बताओ। तो प्रहलाद महाराज बताते कि मतिर्न कृष्ण परतः सत्वा मिथो विपद्यात गुरुवतानाम अदांत कवि विशतांत मित्रम पुनः पुनः सर्वित सर्वणानाम। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि तो उस समय प्रहलाद महाराज और एक बात बोलते हैं कि तो उस समय भगवान को प्रार्थना करते बोलते हैं कि मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ जिनके माया द्वारा व्यक्ति एक को शत्रु और दूसरे को मित्र समझता है और शत्रु मित्र इस प्रकार सारा संसार को देखता है, और मैं उस परम ब्रह्म को प्रार्थना करता हूँ, और उस परम ब्रह्म जो है जो इस प्रकार परिस्थिति सृष्टि किया है, उनसे उन्होंने अपने आप जिस प्रकार मेरा जो मन है इस प्रकार चुंबक अपने आप में लोहे के प्रति आकर्षित हो जाता है, यानी लोहा चुंबक के प्रति जिस प्रकार अपने आप चले जाता है, उसी प्रकार मन मेरा मन उसी भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि से अपने आप चले जाता है। इसमें कोई मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। और भी प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान प्रति भक्ति करता है उसका बुद्धि शुद्ध हो जाता है, और वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना पर नहीं करता, शत्रु मित्र कभी भी नहीं सोचता, वो हमेशा ये सोचता है कि भगवान सभी भगवान के दास हैं और सभी एक हम जैसे हैं, तो कभी भी वो अपना पर नहीं करता, वो शत्रु मित्र नहीं समझता है। जो व्यक्ति इस प्रकार माया में आ जाता है, भगवान के माया शक्ति के अंदर आ जाता है, वो व्यक्ति अपना पर मेरा उसका इस प्रकार सोचता है, शत्रु मित्र इस प्रकार सोचता है। तो प्रहलाद महाराज सेम बात बता दें, जब भी भगवान की भक्ति करना आता कोई करता है तो कभी भी अपना पर शत्रु मित्र नहीं समझता, कि वो क्योंकि भागवत धर्म जो है वो वसुधैव कुटुम्बकम, ये कोई एक सांप्रदायिक धर्म नहीं है, एक गोष्ठी के लिए नहीं है, ये वसुधैव कुटुम्बकम है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने गुरु संध्या और अमर को बोलते, फिर कुछ दिन इस प्रकार शिक्षा देने के बाद फिर हिरण्यकश्यप के पास लेके जाते हैं, और हिरण्यकश्यप फिर ऐसे पूछते हैं और कि तुमने क्या और क्या अच्छा सीखे पाठशाला में, तो वो बताते हैं, वो इस प्रकार श्रवण कीर्तन के बारे में बोलते हैं। तो इस प्रकार जब बोलते हैं तो तुरंत प्रहलाद महाराज को फेंक देता है वो हिरण्यकश्यप ने नीचे, और फेंकने के बाद बहुत उन्होंने आदेश देता है कि इसको ले जाओ, जितना जल्दी इसको बद्ध करो, मार डालो, क्योंकि ये कुलांगार है। और उसने संध तथा अमर करने भी उसको डांटने लगे प्रहलाद महाराज, बोले तुम प्रहलाद तुम कुल के अंगार हो, तुमने हमारा नाम जश को सब माटी में मिला दिया है, तुमने इतने मूर्ख हो कि इस प्रकार जो असुर सभ्यता है उसके जो संस्कृति को नष्ट करने वाले हो। और हिरण्यकश्यप ने उसको उस समय भी डांटा कि तुमने ये भगवान विष्णु जो है ये कुल्हाड़ी के सदृश है, और जो प्रहलाद है वो कांटीले वृक्ष की लकड़ी जैसा है, भगवान विष्णु ये असुर जाति रूपक चंदन वर्ण को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी सदृश है, और जो प्रहलाद है कांटीले वृक्ष है जो कुल्हाड़ी के जो हथियार लगता है भेंट लगता है उसी प्रकार है। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने बहुत से डांटा प्रहलाद को और उनको मारने के लिए आदेश दे दिया। तो उनके जो जलाल थे बहुत सारे उनको मारने का बहुत सारे प्रयास किए, परंतु अंत में वो विफल हुए। और तो हिरण्यकश्यप ने इन सारे चीज़ों को जब देखा बहुत चिंता में आ गया हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये छोटा सा बालक है, इतने शक्ति कहाँ से आता है उसके पास, कि मैं कितने भी प्रकार प्रयास किया हूँ वो उसका प्राण अंत नहीं होता है। तो अभी वो छोटा है, अभी अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो आगे जाकर वो मुझे भी मरने का इससे भी हो सकता है, इस प्रकार प्लान हो सकता है। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने इतने चिंता में आ गया, और सौंदर और अमर को उन्होंने बताया कि प्रहलाद के बारे में आप मत सोचिए, आप हिरण्यकश्यप आप दैत्यों के भी राजा है, और देव जो आप जब भ्रुकुट हिलाते हैं तो देवता लोग तक भी कांपने लगते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने सभी देवताओं को अपने सेवा में लगाया था, शनिदेव को क्या किया था ने अपने पैर के पास पाँव पूछ बना के रखा था, शनिदेव को ऐसे खड़ा माने नील डाउन कर दिया था और उसका पीठ के ऊपर अपना पाँव रखा था। तो नारद मुनि बोले कि ये कैसे मूर्ख है ये। तो नारद मुनि आए उसके पास, आके बोले उनका गुणगान किए हिरण्यकश्यप का, बोले तुमने अच्छा किए और जोर पैर दबाओ और जोर पैर दबाओ उसके ऊपर। तो बोले कि उसको ऐसे क्यों रखे, उसको पलट दो, शनिदेव को पलट के रखो, उसको मुख आपके ओर करो, पेट आपके ओर मैंने पेट के ऊपर पैर रखो, पीठ के ऊपर मत रखो। तो नारद मुनि कहने का आश्चर्य शनिदेव, ताकि हिरण्यकश्यप को देखें और उसका अंत जल्दी से हो। शनिदेव जिसके ऊपर दृष्टि रखेंगे उसका क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने सभी देवताओं को अपना चाकर बनाया था। तो इस प्रकार संत तथा अमर ने दोनों बताते हैं हिरण्यकश्यप की, आप के डर से सारा दुनिया कांपता है, और जहाँ तक प्रहलाद की बात है ये छोटा है, उसका बुद्धि अभी ठीक सही रास्ते में नहीं आया है। मेरा हमारा पिताजी अभी तपस्या करने के लिए गए हैं, वो तपस्या से आने तक आप उसको नाग पास में बांध कर रखिए, और वो फिर जब गुरु के सेवा करेंगे शिक्षा लाभ करेंगे तब फिर उनका बुद्धि ठीक हो जाएगा। इस प्रकार कहने के बाद फिर हिरण्यकश्यप ने थोड़ा सा उसका दिमाग ठीक होता और होश में आता है। फिर इस प्रकार प्रहलाद महाराज को संत तथा अमर को फिर गुरु पाठशाला में ले लेते हैं और पढ़ाते हैं और इस प्रकार शिक्षा देते हैं। फिर लास्ट समय में फिर आते हैं प्रहलाद महाराज को लेके आते हैं, तो फिर बाद में बाद की बात कथा है हिरण्यकश्यप किस प्रकार जब ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करने लगा प्रहलाद के ऊपर, भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। तो प्रहलाद महाराज बचपन में जब जो शिक्षक लोग जो चले जाते थे संत तथा अमर अपने, क्योंकि जो राजमहल के पास में प्रहलाद का जो पाठशाला था, जो पाठशाला बनाए थे राजमहल के पास में था, और वो संत तथा अमर के शिक्षक जो अध्यापक थे वो अपने घर में चले जाते थे कुछ काम धंधा करने के लिए कुछ समय के लिए। तो उस समय को समय का सदुपयोग करते प्रहलाद महाराज ने, सारे जो उनके जो सहपाठी थे प्रहलाद महाराज को बहुत अत्यंत प्रेम करते थे और उनके पास आते थे, उनके मुख ही देखते थे, प्रहलाद के मुख ही देखते थे। तो सारे सहपाठियों आते थे कि हे प्रहलाद आइए हम खेलेंगे, तो प्रहलाद महाराज बोलते कि नहीं, ये मनुष्य जीवन खेलने का नहीं। और प्रारंभ करते शिक्षा, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानी हो दुर्लभम मानुषम जन्मम तदापि अध्रुवम अर्थधम, इस प्रकार प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो हम देखते हैं कि हर जगह में किसी भी जगह में आप जाइए, भागवत में कोई भी किसी भी शास्त्र में जाइए, सेम बात बताया जाता है कि जो हमारा जो मनुष्य जीवन है ये तपस्या करने के लिए है, ये प्राप्त करने के लिए है। निचोत्तर प्राणियों शुक्र तथा स्वरों के मापी कुत्तों के मापी ये इंद्रियों को सुख देना नहीं है, और कठिन इसके लिए कठिन परिश्रम करना नहीं है, सादा जीवन उच्च विचार के लिए है। तो इस प्रकार हर जगह में आप देखेंगे भगवान ऋषभदेव जो बताते हैं ये बात बताते हैं, प्रहलाद महाराज जो बताते हैं ये बात बताते हैं, जब भगवान कपिलदेव बताते हैं ये बात बताते हैं, कोई भी किसी भी जगह में आप देखिए द्वादश महाजन यही बात बताते हैं। तो हमें ये सारे चीज़ों से आज खासकर आज के जो श्लोक है, जो वास्तविक जो आज के श्लोक के जो आलोचना के विषय वस्तु है कि जो हर एक इंद्रियों का जो है लाखों करोड़ इंद्रियों तृप्ति के चाह है, उसको पूरा करने के लिए हमें जीवन भर उसमें उद्यत रहते संघर्ष कर से प्रकृति के साथ, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला, अंत में चिंता ही चिंता रहता, और मृत्यु समय में वही इंद्रिय तृप्ति की भावना में नारकीय चिंता में रहकर फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर नरक जैसा शरीर प्राप्त होता है। फिर तो वहाँ से ऊपर उठना चाहिए और वास्तविक हमें समझना चाहिए हम कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, हमें क्या करना चाहिए, ये भागवत धर्म कैसे अपनाना चाहिए, और भागवत धर्म का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार एक सद्गुरु के शरण ग्रहण करना चाहिए, सद्गुरु का योग्यता क्या है, एक उपयुक्त शिष्य का योग्यता क्या है, इस प्रकार हमें खोज करना चाहिए मनुष्य जीवन में। नहीं तो जो इंद्रिय तृप्ति की जो चेष्टाएँ हैं प्रयास हैं जो भावनाएं हैं ये हर जगह में हर जोनी में उपलब्ध है। आजकल के समय में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो सारे ऐड दिए जाते हैं, इसलिए खासकर हमारे जो इस्कन के जो आचार्य लोग हैं वो बताते हैं कभी भी टीवी नहीं देखना, क्योंकि टीवी में यही सारी चीज़ दिया जाता है। हर एक इंद्रिय तृप्ति के में जैसे पहले बताया हर एक वस्तु को या हर एक एड में एक नया रूपक दिया रूप में बताया जाता है, ताकि ये ऐसे एक हम सोचते हैं कि सेम चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई एक क्रीम है उसको उसी प्रकार एड दिया जाता है ताकि हमें सोचते हैं कि ये एक नूतन क्रीम होगा और वो बहुत अच्छा फायदा करेगा, ये शायद एक क्रीम शायद हम कभी जीवन में यूज नहीं किया है, और मैं इस क्रीम की यूज करूँगा मैं बहुत सुखी रहूँगा। तो इस पर एक उदाहरण मैंने दिया, इस प्रकार हर चीज़ें कार ले लो, मोटर बाइक ले लो, कोई भी दवाई ले लो, इंद्रिय तृप्ति कोई भी साधन ले लो, खाने पीने का ले लो, आजकल के क्या करते हैं चीन में एक एक नया प्रथा शुरू कर दी है, जैसे नारक जिस प्रकार बोलते हैं ना, कदर जो भक्षण करे, नाना जनि भ्रमण करे, कदर जो भक्षण करे, एक बहुत से गंदे चीज खाना शुरू करते हैं चीन में, चीन के लोग में। तो अभी क्या करते हैं, माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं 5-6 महीना जब होता है तो उसको किस प्रकार निकाल लेते हैं गर्भपात करके, वो बच्चे को ले जाते हैं बड़े बड़े होटल में, बहुत बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ रुपया जो पे करते हैं उसको लेके, वो एक सूप बना जाता है, उसको बेबी सूप बोलते हैं, उसको पीते हैं। उसको पीने से क्या होता है ना, वो इंद्रियों जो लोग खास करके भौतिक जीवन सेक्स वगैरह को बढ़ाता है इस प्रकार मानते हैं, और बुद्धि बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है या और कुछ होता है वो। तो इस प्रकार लोग इस प्रकार गंदे से गंदे चीज़ खाना शुरू कर दिए हैं आजकल लोग, क्योंकि ये क्यों ऐसे है ना, वो लोग अपने को शरीर समझते हैं और शरीर को आनंद देना यह जीवन का परम लक्ष्य हो किसी भी हालत में हो, तो उनका वो कोई पिछले जन्म अगले जन्म ऐसा परवर्ती जन्म में कोई विश्वास है ना, भगवत आत्मा के बारे में जानकारी है, आत्मज्ञानहीन व्यक्ति है ये, मूर्ख जैसे हैं व्यक्ति, बल पशु बुद्धि इनको बोला जाता है, पशु बुद्धि भागवत में सब पशु बुद्धि बोला जाता है, क्योंकि जो पशु होता है शोर होते हैं कुछ भी खाने के लिए, यहाँ तक बिष्ठा खाने तक भी तैयार होता है। तो इसी प्रकार मनुष्य होकर अगर हमें मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु को प्राप्त करना है, इसको अगर नहीं समझते हैं तो ये पशु बुद्धि है, इंद्रिय तृप्ति में लगना है। तो हरे कृष्ण, समय हो चुका है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, नितायगोर प्रेमानंदे।